नहीं होगा। रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। उल्लंघ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायादाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात जातं नमामि। भगवान वन में दो जगह लीला किए, चित्रकूट में और नासिक पंचवटी में। वाल्मीकि जी महाराज से पूछा कि मुझे वनवास की अवधि कहाँ पूरी करनी चाहिए, तो चित्रकूट बताया। चित्रकूट बताते बताते बहुत देरी में बताया वाल्मीकि जी महाराज ने। और जब चित्रकूट का नाम सुना तो बहुत जल्दी वहां भगवान पहुंच गए। ऐसे ही अगस्त ऋषि से पूछा कि महाराज अब मुझे कहाँ रहना चाहिए, तो उन्होंने पावन पंचवटी नाऊ, पावन पंचवटी ते ही नाऊ नाम लिया कि पावन पंचवटी है, पांच बट के पेड़ है इसलिए पंचवटी कहलाती हो। दंडक वन में जाओ तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, चले राम मुनि आये सुपाई, आज्ञा लेकर के रवाना हुए और तुरंत ही पंचवटी नियर आई। मैं तत्काल पंचवटी पर पहुंच गए। तो चित्रकूट पहुंचना और पंचवटी पर पहुंचना, उसके बीच में ज्यादा गैप नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है कि ये लीला क्षेत्र है, एक प्रेम की लीला करने की जगह, एक जो है माया की लीला करनी। अब ये माया की लीला करनी है यार। देखो आज का प्रसंग बहुत ध्यान से सुनना। भगवान पंचवटी पर आए तो गीतराज से मित्रता हुई, बड़े प्रेम से बातें हुई। गीतराज ने कहा कि महाराज आपके तो कई पूर्वजों को मैं जानता हूं, दशरथ जी महाराज से तो मेरी बड़ी प्रगाढ़ मित्रता रही है। हम और दशरथ जी महाराज तो बहुत साथ में बड़े प्रेम रखते थे आपस में। तो गीतराज जी से भगवान का पिता के समान प्रेम हो गया और गीतराज जी भी उस पंचवटी के पास राम जी की रक्षा में सेवा में रहा करते थे। वहीं पर एक बड़ी सुंदर पर्णकुटी बना ली, वहां पर रहने लगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वहां जितने ऋषि मुनि रह रहे थे उन सब के मन की एक चिंता मिट गई कि राक्षस लोग हमको मारेंगे कि खा जाएंगे, सब चिंता मिट गई राम जी के रहने मात्र से। वहां के पर्वत नदियां तालाब जंगल बड़े सुंदर लगने लगे। देखो मन में भगवान बसे रहते हैं, उसके बाद आप किसी भी वस्तु को देखोगे वो एक बड़ी सुंदर मालूम देगी। दिन प्रति दिन दिन प्रति अति हो सुहाए, उन ऋषि मुनियों को पंचवटी के स्थल है वो दिन प्रतिदिन बड़े सुंदर मालूम देने लगे। ऋषि मुनियों की क्या कहे, सामान्य पशु पक्षी हैं ये भी आनंद में भरे रहते थे। और मधुप मधुर गुंजत छवि लहें, वो मधुर मधुर गुंजन करते थे, फूलों के ऊपर भौंरे मंडराते रहते थे, पशु पक्षी चिड़ी कबूतर ये सब गुटर गू करते, ची पी करते, सारा वन बहुत आनंद में भरा रहता था। मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ, शेष नाग भी इस आनंद को बता नहीं सकता है, जहाँ पर भगवान आनंद समुद्र भगवान विराजमान है। यहाँ तक बात कह दी। अब देखो थोड़ी रहस्यमय बातें चलती है। एक बार प्रभु सुख आसीना, भगवान खूब आनंद में बैठे हुए थे, तब लक्ष्मण जी महाराज ने आकर भगवान से छल विहीन शब्द कहे, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, पूछा कि हे चर अचर के स्वामी, हे देवताओं के, मनुष्यों के, ऋषि मुनियों के स्वामी, परब्रह्म परमात्मन, मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। अब थोड़ा विचार करो कि चित्रकूट में लक्ष्मण जी कभी कोई ज्ञान की बात नहीं की है, चित्रकूट में कोई बात, चित्रकूट में रहे भी ज्यादा, कोई उनको प्रश्न वगैरह करने की जरूरत नहीं। यहाँ पंचवटी में उन्होंने ये प्रश्न किया कि महाराज मुझे आप समझा करके बताओ, मैं आपको पूछ रहा हूँ निज प्रभु की नाई, अपने अपने भगवान समझ करके आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं सब कुछ छोड़कर आपके चरणों की सेवा में लगूं। अब विचार करो कि सब कुछ छोड़ करके तो चरणों में लगे हुए ही थे लक्ष्मण जी, अयोध्या छोड़ी, माँ छोड़ी, स्त्री छोड़ी, सारा सुख आराम छोड़ा, महल छोड़े, क्या नहीं छोड़ा लक्ष्मण जी ने, फिर भी लक्ष्मण जी कहते हैं कि सब तज करो चरण रज सेवकाई, चरण रज सेवा, मैं सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों की सेवा करूं। तो ये बात क्यों कही कि देखो एक तो होती है क्रिया और एक होती है सेवा। अब तक तो मैंने क्रिया की है, क्रिया क्रिया माने मैं आपके लिए वस्तु ले आया, आपके लिए पर्ण कुटी बना दी, आपके लिए जल ले आया, फल ले आया, ये क्रिया की है। लेकिन सेवा क्या होती है, ये तो विवेक पूर्वक उसको किया जाए, उस सेवा होती है। देखो आजकल कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर में आप हिसाब किताब रख दो और वो उसको पूरा का पूरा दे देगा, तो क्रिया तो हो गई लेकिन उस कंप्यूटर के द्वारा सेवा नहीं हुई है। ऐसे ही मनुष्य क्रिया करे और सेवा न करे तो क्रिया की अच्छी है पर सेवा तो भाव से बनती है। तो आप मुझे ऐसी बात बताओ कि आपके चरणों की सेवा में मेरा भाव भरे, भाव कि लक्ष्मण जी का भाव नहीं था क्या, कि भाव तो था पर लक्ष्मण जी पंचवटी में ये ज्ञान की बात पूछ रहे हैं, क्योंकि ये मायापुरी है, ये माया नगरी है, ये माया स्थली है, इस माया स्थली में हरदम सावधान रहना है। तो इसमें आप खूब गहराई से देखना कि भगवान ने यहां माया दिखाई, सीता जी ने माया दिखाई, रावण ने माया दिखाई और मारीच ने माया दिखाई, यही पात्र आते हैं यहां इस पंचवटी में, यही पात्र आते हैं। शूर्पणखा ने न माया दिखाई, सबने माया दिखाई पर एक लक्ष्मण ऐसे थे उन्होंने कोई माया नहीं दिखाई। लक्ष्मण जी ने माया नहीं दिखाई क्यों, क्योंकि लक्ष्मण जी ऐसा प्रश्न कर लिए भगवान से, ज्ञान का भक्ति का प्रसंग पूछ लिए ना, तो वो सावधान हो गए, सावधान हो गए। कहने लगे महाराज मुझे ज्ञान बताओ, ज्ञान किसको बोलते हैं, वैराग्य बताओ, वैराग्य का असली स्वरूप क्या है, और महाराज मुझे माया के विषय में भी बताओ और भक्ति के विषय में भी बताओ, और जीव में और ईश्वर में क्या भेद है। इस कारण से एक ही तत्व है दोनों, फिर भेद क्या है? जब जीव है ये ईश्वर का ही स्वरूप है, तो फिर इसका नाम जीव क्यों पड़ा, उसका नाम ईश्वर क्यों पड़ा? जैसे घट और कलश, घड़ा और कलशा दो अलग अलग नाम है, एक ही मिट्टी से बने हुए, एक ही कुमार ने बनाया। वो कह रहा ये घड़ा है, ये कलशा है, तो घड़े में और कलशे में थोड़ा सा भेद होता है। क्यों? इसीलिए कि उसका नाम अलग है और इसका नाम अलग है। कलशा होता है उसकी थोड़ी सी बनावट यूं आकर के थोड़ा और ढंग की हो जाती है, और घड़ा होता है वो तो जानते ही, घड़ा गोल मटोल होता है। तो जैसे घट कलश में अंतर होता है, कुछ न कुछ अंतर हो ही जाता है, ऐसे ही जीव और परमात्मा दोनों एक ही तत्व में हैं, फिर इन दोनों में भेद क्या है महाराज? भेद बताओ, ताकि आपके चरणों में मेरा प्रेम हो और मुझे कभी शोक न हो, मेरे अंदर कभी मोह पैदा न हो, मेरे अंदर कभी भ्रम पैदा न हो, इसलिए आप मुझे ज्ञान दीजिए, शोक मोह भ्रम जाए। भगवान कहने लगे, देखो लक्ष्मण, हम तुमको सार सार बात बता देते हैं, तुम खूब ध्यान से सुनना। सुनहु तात मति मन चित लाई। सबसे पहले मैं तुमको माया का रूप बताता हूं कि माया किसको बोलते हैं। एक होती है जीवकृत माया, एक होती है ईश्वरकृत माया। ये मेरा है, ये तेरा है, और ये राग द्वेष अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख, ये जितना झमेला है ये जीवकृत माया है। मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीने जीव निकाया। निकाय माने समुदाय, सब जीव समुदाय को इस माया ने बस में कर लिया। ये माया भगवान की बनाई हुई नहीं है। प्राय लोग ये मानते हैं, जो सत्संग नहीं करने वाले हैं वे जाने क्या करें, हम तो भगवान की माया में फंस गए। भगवान कहते हैं ये हमारी माया नहीं है। माया दो प्रकार की, एक दुष्टा माया, एक अविद्या माया, एक विद्या माया। तो एक जो विद्या माया है, जो मैं इस संसार को बनाता हूं, ये तो है विद्या माया। पांच तत्व बनाए, प्रकृति बनाई, सूरज बनाया, चंद्रमा बनाए, तारे बनाए, वृक्ष बनाए, जीव जंतु बनाए, ऊंचे से ऊंचे लोक बनाए, नीचे से नीचे लोक बनाए, ये ईश्वरकृत माया है, ये मेरी माया है, ये है विद्या माया। विद्या माया माना श्रेष्ठ माया। और दूसरी है अविद्या, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। जो जीव माया बनाता है वो अविद्या माया है, वो अविद्या माया है, उससे जीव दुख पाता है। जा बस जीव परा भव कूपा। तो ये मेरी बनाई हुई माया नहीं है अविद्या माया, मेरी बनाई हुई तो ये सृष्टि है। ये सृष्टि है हरि प्रेरित, नहीं निज बल ताके। माने ये भगवान की बनाई हुई माया है, ये भगवान के वश में रहती है, ये भगवान को वश में नहीं कर सकती। इसलिए जीव को अपनी अज्ञान से बनाई हुई माया का त्याग करना चाहिए। गो गोचर जहर लगी मन जाई। जो इंद्रियां और विषयों में ही घूमने वाली जो हमारी दृष्टि है, ये माया है, इससे यहां पर ऊपर उठना चाहिए। ये तो बता दिया माया का स्वरूप। ज्ञान क्या है? कि ज्ञान वो है कि जहां मान है ही नहीं, कोई किसी चीज का मान माने अहम भाव, ये मैं हूं, मैं कुछ हूं, ऐसा नहीं है। मैं बड़ा आदमी हूं कि मैं कुछ हूं, कि मैं ज्ञानवान हूं, कि धनवान हूं, कि जनवान हूं, कि ऐसा कुछ हूं, अपने में किंचन मात्र भी अहम भाव न आना, ये ज्ञान है। देखो ज्ञान में अहंकार नष्ट होता है और भक्ति में अहंकार बदलता है। कल जैसे आपने सुना ना कि एक बान अश्व अभिमान जाई जनी भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे, कि मेरा अभिमान भोलेपन से भी नष्ट नहीं होना, अभिमान मेरा रहना चाहिए। वो क्या है, अभिमान बदलना है। और ज्ञान में तुमने पूछा तो ज्ञान मान जह एक नाई, जहां पर किसी प्रकार का भी मान न रहे और सबको ब्रह्ममय समझे। लोग देखते हैं कि सबको भगवान समझने वाला होगा तो ये मकान को भगवान समझेगा, पंखे को भगवान समझेगा, तो पंखा को तो दिखेगा नहीं, भगवान ही दिखेंगे उसको। ऐसी बात नहीं है। भगवान को देखने का अर्थ ये नहीं है कि ये दृश्य तो दिखेगा नहीं, इसकी जगह कोई भगवान आकर के दिखेंगे, ये सब तो लुप्त हो जाएगा और भगवान चतुर्भुज वाले भगवान दिखेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें भगवान दिखते हैं अर्थात तत्वतः ज्ञान होता है। बताया था ना कि जैसे एक छोटी सी शीशी में गए साहब गंगा जी है, गंगा जी ये गंगा जल है, ओहो गंगा जल है। तो जैसे गंगा जी में आदर भाव है, ऐसा का ऐसा आदर भाव गंगा जल में, छोटी शीशी में जो जड़ है उसका भी वैसा ही भाव। क्यों, वो गंगा जी से जुड़ा हुआ, गंगा जी का ही जल है वो। अब गंगा जी का जल है तो उसमें हमारे अंदर की श्रद्धा है, भाव है, वो तो वो गंगा जी और चाहिए शीशी वाली, शीशी में रहने वाला गंगा जल एक ही बात है। पर कोई कहेगा कि गंगा जी गंगा जल कैसे है साहब, ये गंगा जी है, इसमें स्नान नहीं हो सकता, नहीं यहाँ पाठ नहीं माने तट नहीं, बहने का रूप नहीं। कि नहीं भाई, जल तत्व देखो। ऐसे ही ज्ञान के द्वारा तत्व देखा जाए, ये तत्व ये वस्तु है, ये पंखा है, ये काय से बना है भाई, कि ये लोहे से बना है, तो लोहा पृथ्वी से बना है, पृथ्वी ये पृथ्वी जल से बनी है, जल है वो आग से बना है, आग वायु से बना है, वायु आकाश से बना है, आकाश परमात्मा से बना है। ऐसे इसके कारण पर विचार करते हैं। कपड़ा है ये, तो इस कपड़े को देखे क्या है इसमें भाई, कपड़े में तो धागा है, तो ये धागा है तो धागा काय से बना, ये कपास से बना, तो कपास कहाँ पैदा हुई, कि जमीन से पैदा हुई। अच्छा जमीन के इस काय से पैदा हुई, कि जमीन तो जल से पैदा हुई और जल आग से। सब चीजें जो जमीन से पैदा होने वाली है, वहां जमीन देख करके फिर उसके कारणभूत परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि चली जाती है। साहब आप कौन से ब्राह्मण हो, कि हम गौतम ब्राह्मण हैं, तो गौतम ब्राह्मण का अर्थ ये हुआ कि आप गौतम ऋषि की परंपरा से, हजारों वर्ष पहले गौतम ऋषि हुए उनकी परंपरा में चले गए। तो वहां आप कौन से ब्राह्मण हो, कि हम भारद्वाज ब्राह्मण हैं, तो ओहो भारद्वाज जी से चालू हुए। आप कौन से ब्राह्मणों की, हम सारस्वत ब्राह्मण है, अच्छा सरस्वती देवी से जुड़े हुए आप ब्राह्मण हो। माने जो जिस जाति का है तो वो उसके मूल कारण में पहुंच जाता है। ऐसे ही जो ज्ञानी महात्मा होते हैं, देख ब्रह्म समान सब माही, सब में एक ब्रह्म देखते हैं, परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। देखो इसीलिए ज्ञानियों को हम लोगों के समान रोना हंसना और सुखी दुखी होना नहीं होता। वो देखे ये भी भगवान का रूप, ये भी भगवान का रूप है, चाहे कोई मरो चाहे कोई पैदा हो, दोनों में एक भगवान को देखते हैं। और आपने वैराग्य का रूप पूछा है तो सुनो लक्ष्मण, वैराग्य वो होता है कि तीन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलती हैं साधन भजन करने से, सिद्धियां आती है तिनके के समान समझे। नापासर में रेलवे स्टेशन था, अभी भी है, गाड़ी रुकती थी तो थोड़ी देर के लिए रुकती थी, सेठ जी से पूछा कि सेठ जी यहां तो गाड़ी एक मिनट ठहरती है, कुछ सार बात बता दो। तो सेठ जी ने यहां बताया, ऐसा सुना है परंपरा से कि देखो ब्रह्म लोक के सुख है वो शुकर की विष्ठा के समान त्याज्य है। जैसे सूकर की विष्ठा होती है वो त्याज्य होती है, ऐसे ब्रह्मलोक तक के सुख होते हैं वे त्याज्य होते हैं। इसमें वैराग्य की सारी बात आ गई। भगवान कहते हैं कि तिनके के समान, जैसे हम तिनके को कुछ नहीं समझते, यहां तिनका पड़ा, ऐसे बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं जो त्रिगुणात्मक सिद्धियां हैं, उनका त्याग तिनके के समान, इनको तुच्छ समझे, मतलब इनको तुच्छ समझे। त्याग का अर्थ तो अपनी समझ है, वो त्याग का फेंक देना नहीं है कि साहब आप तो त्यागी हो चश्मा फेंक दो, आप त्यागी हो तो पुस्तक क्यों रखो, आप त्यागी हो तो कपड़ा क्यों रखो, ये नहीं है। अंदर की समझ होती है ना, उस समझ में त्याग होता है। समझ के त्याग के लिए भगवान कहते हैं तीन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। और आपने ईश्वर का और जीव का भेद पूछा तो हम बताते हैं कि माया ईशन आप कहूं जान कही सो जीव। जीव वो होता है जो अपने को भी नहीं जानता और भगवान को भी नहीं जानता और माया को भी नहीं जानता, उसका नाम जीव है। न तो अपने को जाने, न ईश्वर को जाने, न माया को जाने, केवल माया के पदार्थों में ही लिपता रहता है बस। ये समझ, ये चीज बड़ी सुंदर है साहब, बड़ी अच्छी है, बड़ी उपयोगी है, क्योंकि चश्मा रखने में काम आती है, नहीं तो ये कांच है कहीं फूट जाए, बड़ी अच्छी है, बस इतना ही देखते हैं। पर ये नहीं देखते कि ये पार्थिव वस्तु है, पृथ्वी से बनी हुई है, इसमें इसका उपयोग कर लो लेकिन इसको महत्व मत दो। ये जो विचार नहीं करता उसका नाम जीव है। और जो तत्त्व गुणों के अनुसार लोगों को बंधन और मोक्ष देने वाला है, जिसने जो कर्म किया है उसके अनुसार उसको फल देने वाला है, सबका नियामक है, सबका शासक है और माया को अपने अधीन करने वाला है, उसका नाम ईश्वर है। ईश्वर में और जीव में वास्तव में कोई अंतर नहीं है, और अंतर बताया तो बड़ा भारी अंतर बताया, तत्व में अंतर नहीं बताया है। जीव भूल गया, अपने को भी भूल गया और भगवान को भी भूल गया और माया को भी भूल गया, और ईश्वर है वो बंधन को और मोक्ष को और सबको जानते हैं, पर सच्चिदानंदत्व में कोई कमी नहीं है। सच्चिदानंद जीव में भी है और सच्चिदानंद तत्व ईश्वर में भी है, परंतु जीव भूल जाता है बस, इसी कारण से उसको जीव बोलते हैं। ये बात समझ में कब आती है? ये बात जब समझ में आती है जब अपने अंदर विषयों से वैराग्य हो। तो वैराग्य कैसे होता है कि धर्म से विरति, धर्म का पालन करोगे तो वैराग्य होगा। आजकल लोग कहते हैं कि भाई गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, वास्तव में गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करते हैं। हम लोग भी साधु धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। धर्म का पालन करे तो मनुष्य को जहां धर्म का पालन होता है वहां वैराग्य हो जाता है। वो गृहस्थ का पालन करने को ही परम धर्म माने धर्म हो गया। धर्म इसको नहीं बोलते हैं, धर्म बोलते हैं कि बिना कुछ चाहे अपने पास जो कुछ है वो सेवा में समर्पित करे, अपने शरीर को, अपने वस्तु को दूसरों की सेवा में लगाए, माता पिता की सेवा में लगाए, परिवार की सेवा में लगाए, उसका नाम धर्म है। तो धर्म ते विरति, बड़ी विचित्र बात है कि जहां धर्म का पालन होगा वहां वैराग्य होगा ही होगा। यदि वैराग्य का पालन नहीं हुआ है तो भाई धर्म का पालन नहीं हुआ है। धर्म का और वैराग्य का आपस में संबंध है, कार्य कारण भाव है। धर्म तो है कारण, वैराग्य है कार्य। वैराग्य का बीज धर्म है, धर्म से वैराग्य प्रकट होता है। योग ते ज्ञाना, और योग क्या है? जिससे ज्ञान प्रकट होता है उसका नाम योग है। और ज्ञान क्या है कि मोक्ष प्रद, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जिससे हमारी मुक्ति हो जाए वो ज्ञान है। केवल पुस्तकों का ज्ञान कर लिया, केवल लोगों को सुना दिया, रिझा दिया, बातें बना ली, उससे तो कोई लाभ नहीं है। इसको संतों ने तोता रटन कहा है। तोता रटन, तोता है वो बोलता है, साहब देखो जाओ जहां पानी में जाओ तो उसको लकड़ी को पकड़ करके हिलना नहीं, और हिल जाए तो वापिस ऊंचे होकर के और तुम उड़ जाना, और बिल्ली आवे तो उड़ जाना। ऐसे ऐसे करके उनके बात सीख तो लिया। अब बिल्ली आई उसने पंजा मार लिया, और जहां गोल लकड़ी आती है उसको पकड़ के रही हिलने लग गया और उड़ गया, और यूं पकड़ में आ गई उसके वो लकड़ी रो ऊंचे आकाश को देख करके, आज हम तो पकड़े गए, हम तो आकाश के नीचे दब गए, इतने में आकर उसको पकड़ लेते हैं। तो ये ज्ञान तोते का रटन, तोता रटन ज्ञान होता है, वो काम का नहीं होता। ज्ञान होता है वो अंदर अपने स्वयं की समझ को बदलता है, आचार विचार व्यवहार को बदलता है, उसका नाम ज्ञान होता है। और आपने मुझे भक्ति के बारे में पूछा लक्ष्मण, तो भक्ति तो वो है कि जिससे मैं बहुत जल्दी रीत जाऊं, राजी हो जाऊं, बस उसका नाम भक्ति है। देखो यहां ये नहीं कहा है कि आप जप करो कि तप करो कि ध्यान करो कि कुछ नहीं कहा है। भगवान ने कहा कि जाते बेगी द्रवों में भाई, हे भाई लक्ष्मण जिससे मैं जल्दी द्रवित होता हूं, पिघल जाता हूं, बस वही मेरी भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है। ये पिघलाना तो तुम्हारे हाथ की बात है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि भक्ति होती है ये अनुपम सुख देने वाली होती है, और कोई संत अनुकूल हो जाए, संत की कृपा मिल जाए, तो वहीं से ये भक्ति मिलती है। हर जगह भक्ति मिलती नहीं है। भक्ति की साधन कह बखानी, मैं तुमको भक्ति का साधन बताता हूं जिससे आदमी जल्दी से आराम से मेरी भक्ति प्राप्त कर सके। क्या? एक तो अपने से बड़े लोग होते हैं, चाहे वो वर्ण में बड़े हो, चाहे आश्रम में बड़े हो, चाहे अवस्था में बड़े हो, चाहे पद में बड़े हो, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, ब्राह्मण का नाम लिया ना कि ब्राह्मण के चरणों में प्रेम हो, इसका अर्थ केवल ब्राह्मण ही नहीं है, ये ब्राह्मण समस्त पूजनियों का उपलक्षक है। माने देखो एक बच्चे को माँ बोलती है कि बेटा ये दही पड़ा है दही है? अब कौवे देख बहुत मंडरा रहे हो, इस कौवे से दही की रक्षा करना। तो बच्चा डंडा लेके बैठ गया है कौओं की तरफ, तो वो खड़ा है, कोई कौवा नहीं आ रहा। इधर से बिल्ली आए, बिल्ली आकर के वो दही खाने लगे तो बच्चा खाने देगा क्या? नहीं खाने देगा। अब वो कह क्यों नहीं खाने देते भाई, बिल्ली को खाने दो, तुम्हारी माँ ने तो कहा है कि ये कौवे नहीं आने चाहिए, बिल्ली के लिए थोड़ी मना किया है। कह नाना एक कौवे का नाम लेकर के जितने भी दही खाने वाले, दही को नष्ट करने वाले प्राणी हैं, उन सब के लिए आ गया, एक कौवे का मना कर गया, कौवे के बहाने से सबको मना कर दिया। इसी प्रकार से विप्रचरण है, ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करो, इसका अर्थ जो अपने से बड़े हैं, माता है, पिता है, पति है, बड़े भाई है, बड़ी बड़ी भाई की पत्नी भाभी है, इनको प्रणाम करना चाहिए। नमस्कार ते रामदास कर्म सबे कट जाए। आजकल परिवारों में जो अशांति का वातावरण फैला हुआ है उसमें कई कारणों में ये भी एक कारण है कि अपने से बड़ों को प्रणाम करना भूल गए। महाराज श्री ने तो कहा था कि भई आप साधुओं को तो प्रणाम करते हो, अच्छी बात है, ठीक बात है, लेकिन घर में अपने से बड़ों को प्रणाम करते हो कि नहीं? तो कहा कि महाराज घर में तो नहीं करते, कोई फायदा नहीं, हम साधुओं को प्रणाम करते हो, आप देखते हो ये साधु संतों को प्रणाम करेंगे लाभ होगा, घर में माँ बाप को प्रणाम नहीं करते, स्त्री पति को प्रणाम नहीं करती, और दादा दादी और सास ससुर स्त्री उनको प्रणाम नहीं करती, उनके प्रति कुड़ती रहती है, चिढ़ती रहती है। सासू भी बहू के प्रति चिढ़ती रहती है। अब वो चाहे कितना ही ऊपर की क्रियाएं कर लो, कोई लाभ नहीं है। इसलिए सबसे पहला धर्म बताया है कि प्रथमई विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। और वैदिक विधान के अनुसार जिनका जो जो कर्म है उसमें उनका प्रेम होना चाहिए, उस कर्म को करना चाहिए। और इसका फल क्या होगा बताया ना, इसका फल होगा विषयों से वैराग्य होगा। जो व्यक्ति अपने कर्म का पालन करेगा, कर्तव्य का पालन करेगा, उसकी विषयों में इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करता ही नहीं। कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अतः उसको तो वैराग्य होगा ही होगा। और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ प्रकार की जो भक्ति होती है, उन नौ प्रकार की भक्ति के अंदर दृढ़ता आती है। ये सब कब होता है? अपने घर में अपना व्यवहार सुधारने से होता है। हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं पर काम में नहीं लाते ना, इस कारण से भगवान ने यहाँ और ही ढंग की बातें कही हैं। भगवान का उपदेश बड़ा विचित्र है यहाँ। वे ये अपने अपने धर्म अपने व्यवहार को सुधारेंगे तब भक्ति के अंदर दृढ़ता आएगी, और फिर मेरी लीला के अंदर तुम्हारा मन होगा। लोग देखते हैं इस व्यवहार में क्या है ऊपर, ये तो संसार का व्यवहार, संसार ही झूठा तो व्यवहार भी झूठा, संसार झूठा तो व्यवहार भी झूठा, ऐसा लोग बोलते हैं। तो इसका भी उत्तर दिया है संतों ने, शास्त्रों में आता है कि जैसे आपके पास एक लकड़ी है, कोई कुत्ता वगैरह आपके पास आए तो आप लकड़ी से भगा दो। आप खाट पर बैठे हुए हो और अब आपको नींद आ गई, नींद आ गई तो स्वप्न में चार पांच कुत्ते आए आपके पास, सपना है, और वो कुत्ते आए रोहू हो हो करते करते आपकी तरफ दौड़े। अब उस समय स्वप्न में आपके पास लाठी नहीं है तो कुत्ते आपको फाड़ देंगे कि नहीं? कि फाड़ जाएंगे, स्वप्न में ही। स्वप्न का कल्पित शरीर है, उस शरीर पर कल्पित ही ये कुत्ते आकर के फाड़ेंगे तो आपको घबराहट होगी, दुख होगा। अब जगेंगे तो ये लट्ठी है ना, लट्ठी, ये जगी हुई लट्ठी काम नहीं आएगी, स्वप्न में तो स्वप्न की लट्ठी काम आएगी। ऐसे ही ये सारा संसार झूठा है, तो इसमें झूठा है तो व्यवहार भी झूठा है, परंतु इस व्यवहार को सुधारोगे तो ये संसार झूठा ही दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ये संसार झूठा है, इसको झूठा समझने के लिए अच्छे से अच्छा व्यवहार करोगे। संसार तो झूठा है भाई, कितने दिन का है, अपनी तरफ से अच्छा व्यवहार कर जाओ, व्यवहार अपना है। ये व्यवहार जो हम करेंगे, इस व्यवहार में जो हमारी भावना होगी, वो भावना है, वो स्थायी है। इसलिए ऐसा नहीं कि भाई संसार झूठा है, व्यवहार भी झूठा है, व्यवहार में तो राग द्वेष रहे तो रहे, क्या फर्क पड़ता है इससे? राग द्वेष रहने से क्या, अपने तो ब्रह्म ज्ञान हुआ है, तो केवल वो मूर्खता की बात है। और गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोई जह जाने दृढ़ सेवा, ये बताई गई। अपने गुरु है, माता पिता है, सास ससुर है, बंधु भाई है, पति है, इन सबको मेरा स्वरूप समझ करके सेवा करें। सब मोई कह जाने दृढ़ सेवा। लोग कहते हैं कि पति की सेवा करने से क्या होता है, पति तो शराब पीता है, ऐसे शराब पीने वाले की सेवा करने। अरे पति शराब पीता है, कड़वा बोलता है और अच्छा व्यवहार नहीं करता है, कैसा भी है, आपकी उस पति की सेवा से कल्याण नहीं होगा। उस पति में आपकी भावना भगवान की होगी, आपकी उस भावना से कल्याण होगा। ऐसे ही पत्नी चाहे कैसी कर्कशा हो, कितने कठोर बोलने वाली हो, उसमें भगवत भाव होना चाहिए, भगवत भाव। उस भाव से हमारा कल्याण होता है। लोग कहते पति के आचरण अच्छे नहीं, उसकी सेवा से क्या फायदा है। आप पति को मनुष्य समझते ही क्यों है? भगवान इस पति के रूप में आपकी सेवा लेने आए हैं, सेवा कर दीजिए। ऐसे रूप में स्त्री आई है, सेवा कर दीजिए। ऐसे रूप में भगवान पुत्र बनकर के आए, सेवा कर दीजिए। ऐसे रूप में माँ बाप बन गए, सेवा कर दीजिए। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मुई कह जाने दृढ़ सेवा। और भक्ति का अंतिम रूप बताते हैं कि मेरे गुणगान सुनने से, मेरी महिमा सुनने से शरीर पुलकित हो जाए और वाणी में गाद गद्य हो जाए, गदगद वाणी हो जाए और नयनों से एकदम स्वाभाविक ही जल बरसने लगे। लेकिन इसका पता नहीं रहना चाहिए, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारे आंखों से आंसू आते हैं। एक ने किसी ने कहा कि देखो जी, हमारा तो कथा में बड़ा प्रेम है, भगवान की बात सुनते हैं तो हमको रोज भी बहुत आता है, लेकिन क्या करें, हमारा क्रोध नहीं छूटता है, हम तो कड़वी बात बोल देते हैं। तो साथ में क्या कह रहे हैं कि भगवान की कथा में हमको रोज भी बहुत आता है। अरे रोज आता है, हम माने कथा में रोते हैं, ये अच्छी बात आप ध्यान देते हैं कि ये हमारे अंदर अच्छी बात है, तो अब ये बात अभी आपसे दूर है, वो असली बात आई नहीं है। ये ज्ञान ही नहीं होना चाहिए कि हम रोते हैं क्या, रोते हैं तो इसका मतलब है कि अभी दूर है। इसीलिए कहा दम्भ न जाके, जिसके दम्भ, ये दम्भ में नहीं आनी चाहिए बात, दिखावटीपन, चाहे अपने को दिखाओ चाहे दुनिया को दिखाओ, तो ये दिखावटीपन जहां आता है वहां पर मेरी भक्ति नहीं होती। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहिनी काम, तिनके हृदय कमल महू, करऊ सदा विश्राम। मैं उन लोगों के हृदय कमल में सदा विश्राम करता हूँ जो कुछ न चाहकर मेरे से प्रेम करते हैं, जिनकी वाणी से, मनसा वचसा और कर्मणा, जिनके हृदय में निष्काम भाव से मेरे प्रति प्रेम है, मेरा भजन करते हैं, और उनके हृदय कमल में मैं निवास करता हूँ। ये मैंने ये जो है बताई बात। लक्ष्मण जी बड़े आनंदित हो गए। लक्ष्मण जी ने कोई आगे प्रश्न नहीं किया, सब आनंद से लक्ष्मण जी महाराज सुनते रहे। इस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज का भगवान की सेवा में भाव बढ़ा, ये बात एक जगह पूरी हुई। अब आते हैं कि ये शूर्पणखा का प्रसंग। अब देखो पंचवटी में सबसे पहले ज्ञान बताया, लक्ष्मण जी ने ज्ञान लिया। ज्ञान लेने से क्या हुआ कि एक लक्ष्मण जी थे ना, जिन्होंने पंचवटी में अपना रूप नहीं बदला, बाकी सब ने बदला। सबसे पहले तो शूर्पणखा आई। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय, दारुण जस अहिनी, जैसे सर्पणी होती है ऐसे दुष्ट हृदय वाली, वो पंचवटी में आई और दोनों राजकुमारों को देख करके उसके मन में प्रेम पैदा हुआ। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि स्त्री की सुंदरता पर पुरुष का मोहित होना और पुरुष का सौंदर्य देखकर स्त्री का मोहित होना, ये प्राय अज्ञानियों के हृदय में हो ही जाता है। तो शूर्पणखा ने क्या किया कि रुचिर रूप धरी। अब देखो अपना रूप बदल दिया, बड़ी कुरूपा थी वो और काली कलूटी, दांत उसके बाहर आए हुए बड़ी विकराल, लेकिन रुचिर रूप धरी, प्रभु पर ही आई, भगवान के पास उसने रूप बदलाया। अब कहा जाए कि भाई आप चित्रकूट में क्यों नहीं गई, जा नहीं सकती थी क्या? खूब आराम से जा सकती थी, पर चित्रकूट में कोई नहीं आया, क्योंकि वो भक्ति का, प्रेम का स्थल था ना, इसलिए वहां पर ये बनावटी बातें हो ही नहीं सकती थी, ये माया का क्षेत्र है। वो भगवान को वहां प्रेम का रूप, प्रेम की लीला करनी थी, तो यहां आई वो रुचिर रूप बना करके, सुंदर रूप बनाकर, बड़ा सुंदर वस्त्र है, सुंदर स्वरूप है, और मुस्कुराती हुई भगवान के पास आई। कभी जीवन में मुस्कुराई नहीं हो, वो मुस्कुराती हुई आई और बड़े निर्भीक होकर के ढीठता पूर्वक कहने लगी, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी, तुम्हारे समान तो कोई संसार में पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। देखो ये विधाता ने कितना अच्छा संयोग बनाया है, मैंने तो मेरे अनुरूप बहुत से पुरुषों को देखा पर खोजा, लेकिन तीनों लोक में कोई नहीं मिला। अब इसलिए मैं कुमारी रही। देखो क्या बोलती, मैं कुमारी हूं, कुमारी नहीं थी। इसके पति का नाम था विद्युत जिम, इसका विवाह हुआ हुआ था, इसकी पति इसके पति थे। बोलती क्या है, ताते अब रहू कुमारी, ताते अब लगी रहू कुमारी। अब तो देखो मैं तो कुमारी रही, मेरे समान मुझे कोई पुरुष मिला नहीं, मैं क्यों शादी करने जाती, तो अब क्यों आई। अब ध्यान से सुनना, मनु माना कछु तुम्हें निहारी। क्या बताऊं, मैं इतनी सुंदर हूं, इतनी ऊंची हूं कि तुम्हें देख करके थोड़ा सा मन हुआ। मनु माना कछु तुम्हें निहारी, तुम्हें देख करके थोड़ा सा मन हुआ। भगवान का लक्ष्मण के पास चली जा। अब कोई भगवान से अकेले में बात करे कि महाराज आप तो कहते हो कि शक्रदेव प्रपन्न आए, एक बार भी मेरी शरण में आ जाए, एक बार जो मुझे चाह लेता है और जो मेरे पास आ जाता है मैं उसको अभय कर देता हूँ। ये आज शूर्पणखा पहली बार आपके पास आई, आते ही आपने कहा लक्ष्मण के पास चली जाए, ऐसा क्यों किया आपने। भगवान कहते हैं कि मेरी शर्त को पूरी तो समझो, जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, अनन्य भाव से। शूर्पणखा का भाव क्या है, मन माना कछु तुम्हें निहारी, तुम्हें देख करके थोड़ा सा मन हुआ, थोड़े से मन से मैं थोड़ी होता हूँ, मैं तो पूर्ण समर्पण भाव के द्वारा ही ग्राही होता हूँ। तो ये पूर्ण समर्पण नहीं था, ये कछु शब्द बोले ना तो उन्होंने लक्ष्मण के पास भेज दिया, और भेज दिया इतना ही नहीं, कहा कि तुम कुमारी हो ना, ऐसे लक्ष्मण भी कुमार आ जाओ। लक्ष्मण कुमारा था क्या, लक्ष्मण का तो विवाह हुआ है, खुद गोस्वामी जी महाराज लिख के आए, पत्नी का नाम उर्मिला। तो ये भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि उसने ऐसा कह दिया, तो उसके बराबर हो गए भगवान। वो तो राक्षसी है, वो तो मूर्खा है, वो तो कुछ जानती नहीं है, वो तो कुछ ऐसा ही बोल देगी, भगवान भी वैसा ही बोलेंगे क्या, फिर भगवान मेरे उसमें क्या अंतर रहा, क्या अंतर रहा है क्या। देखो वो तो कहती है कि ताते अब लगी रहूं कुमारी, मैं कुमारी हूं, और भगवान बोलते हैं अह कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरा छोटा भाई कुमार है। कुमार माने राजपूतों में बड़े भाई को भंवर, छोटे भाई को कंवर ऐसे बोलते हैं, ये कुमार है, कंवर है, ये कंवर, ये मेरा कंवर है, छोटा भाई है मेरा। कुमार का नाम मेरे भगवान से कहे, भगवान के मैंने कुंवारा थोड़ी कहा है, कुंवारा मैंने तो कुआर कहा है, कुआर। भोजपुरी भाषा में कुमार को कुआर बोलते हैं, भाई कंवर को है कंवर, ये हमारा कंवर है, कंवर माने मेरे से छोटा भाई। तो ऐ कुआर मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई और कुआर। अच्छा जब छोटा भाई कह दिया तो फिर कुमार क्यों कहा, और कुमार कह दिया तो मेरा छोटा क्यों कहा, कि नहीं ये छोटा कुमार है मेरा, छोटा कुमार, इसका मतलब मेरे बड़े कुमार और हैं, भरत उसका नाम है, भरत नाम। तुमने कहा ना कि मैंने तीनों लोक में मैं ढूंढ आई, तुम्हारे जैसा कुछ कोई मुझे मिला नहीं। अरे तू तीन लोक में जाती तुझे मिल जाते, मेरे ही रूप में भरत बैठा, मेरे ही रूप में ये लक्ष्मण बैठा, ये मेरे ही तो कुमार है। कुंवार मोर लघु भ्राता, तो भगवान ने कुंवार माने कुमार कंवर, और मोर लघु भ्राता मेरा, ये मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई कुंवार, अर्थात एक भाई मेरा और है। जैसे सीता जी ने कहा था कि ये गौर शरीर वाले लक्ष्मण जी हैं, ये मेरे छोटे देवर हैं। इसका मतलब लक्ष्मण जी के लिए या सीता जी के लिए एक बड़े देवर और थे, वो भरत जी महाराज। ऐसे ही भगवान ने कहा अह कुवार मोर लघु भ्राता, तो वो लक्ष्मण जी की, वो लक्ष्मण के पास चली गई। अब देखो गोस्वामी जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं, गए लक्ष्मण, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी ने थोड़ा गौर से देखा, अरे 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 ये तो रावण की बहन है, रावण की बहन है, ये भगवान ने तो नहीं कहा उसको, रावण की बहन है तू सुंदर बनकर के आई है, भगवान ने सुर्पनखा को नहीं कहा। लक्ष्मण जी समझ गए अंदर के, अच्छा ये रावण की बहन है, और भगवान की तरफ देखने लगे। ऐसे से देखे ये, इसको आपने यूं करने लगे हो। लक्ष्मण जी कैसे पहचाने हो? लक्ष्मण जी इसलिए पहचाने कि लक्ष्मण जी को भगवान ने पंचवटी में आने पर ज्ञान दिया। इस माया स्थल पर लक्ष्मण जी बड़े सावधान सजग थे, इसलिए भगवान ने उनको ज्ञान दिया। वो ज्ञान का प्रभाव पड़ा कि अरे रावण की बहन है। भगवान की तरफ देखा और उस शूर्पणखा की तरफ का, अरे सुंदरी सुनू मैं उनकर दाय, तू बड़ी सुंदर, तू मेरे पास क्यों आई है? यहां सुंदरी का अर्थ क्या है? यहां सुंदरी का अर्थ है कि तेरे भाव को मैं जानता हूं, तू भाव से सुंदर नहीं है, केवल बाहर से ही सुंदर है। हमारे यहां भाव की सुंदरता चाहिए भाई, इसलिए हम तो तेरे को स्वीकार ही नहीं करेंगे, कोई नहीं तुझे स्वीकार करेगा, कोई तुझे पनाह नहीं देगा। सुंदरी सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। इसलिए भाई मेरे पास रहेगी, मैं तो इनका दास हूं, तो तेरे को सुविधा तो मिलने वाली है नहीं। ये कौशलपुर है, समर्थ है, प्रभु है, स्वामी है, ये जो कुछ तुम्हें स्वीकार करे अस्वीकार करे उन्हीं के लिए ही ठीक है, ये उन्हीं के लिए ही बैठेगी बात। मैं तो इनका सेवक हूं, और सेवक सुख चाहे, कोई आदमी सेवक रह करके सुखी होना चाहता है कि सेवा में, हम आपके सेवा में हैं साहब, और आराम से नींद ले रहे थे, अरे उठे क्यों नहीं कि नींद आ रही थी। तो भाई सेवक रहे और सुख की नींद सोए ऐसा संभव नहीं। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, और भीख मांग करके रोटी खाए और मान बढ़ाई भी रखे। साधु लोग पहले भिक्षा इसीलिए लाते थे, साधु लोग भिक्षा इसलिए लाते थे कि भिक्षा की रोटी खाएंगे तो दुनिया के सामने हम घमंड नहीं लगाएंगे, नीचे नीचा मुख किए हुए रखेंगे कि भाई हम तो आपकी रोटी मांग के खाते हैं, हमारे पास तो रोटी भी नहीं है, हम किस बात की जो है किस बात की गर्मी लाए, हम क्या बात है हमारे पास, रोटी तो आप लोग खिलाते हो। साधु भिक्षा इसलिए लाता है कि दुनिया उसको दो बात कहे सुनाए तो भी उसको प्रेम से सहेगा, भाई देखो रोटी भी ये देते हैं तो उपालम भी यही देंगे, जिनकी खावे बाजरी उनकी बजाओ हाजरी। तो भाई रोटी ये खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं तो भाई उपालम भी इनका सुनना पड़ेगा। इसलिए सेवक सुख चाहे और मान भिखारी, भीख मांग करके पेट भरने वाला व्यक्ति मान चाहने लगे, आओ साहब क्या समझे हो, क्या समझते हैं हम आपको, क्या हम साधु हैं, हम ऐसे हैं, अपने को बड़ा मानोगे, और 11 बजे भूख लगेगी तब टुकड़े मांग के नहीं खाओगे तो उस समय घमंड सब समाप्त हो जाएगा, घमंड आएगा ही नहीं उसमें। और व्यसनी धन, और जो आदमी जुआ खेलता है, शराब पीता है और बहुत कुकर्म करता है, व्यसनों में पड़ा हुआ, धन चाहे कि मेरे पास खूब धन हो जाए, कभी संभव नहीं है। और शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचारी पुरुष शुभ गति को प्राप्त कर ले असंभव बात है, और लोभी आदमी यश को प्राप्त करे कभी संभव नहीं है। खूब यश तो उसका होता है जो दान पुण्य में अच्छे काम में पैसा लगाता है, जो हरदम संचय संचय में पड़ा रहता है, कीड़ी संचय तीतर खाए, क्या बताए, पापी का धन पर ले जाए और कीड़ी संचय तीतर खाए। कीड़ी लाला के इकट्ठी करती है, तीतर आकर के चुग लेता है। कीड़ी खूब सा अनाज इकट्ठी कर लेती है कि तीतर खाए, क्योंकि कीड़ियां बिल में इकट्ठा करते तो ऊंदरा जाकर चूहा जाकर खा जाता है, उनका संग्रह उनके कभी काम नहीं आता। ऐसे लोभी का संग्रह लोभी के काम नहीं आता। और तीन बड़े जो है नरक के दरवाजे बताए, काम क्रोध और लोभ। तो लोभी जस चह और चार गुमानी। गुमानी माने अहंकार करने वाला व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष का फल चाहे, असंभव बात है। ये तो ऐसे ही असंभव है जैसे कोई आकाश से दूध दूना चाहे। आकाश से आकाश में दूध कहां मिलेगा भाई? दूध मिलेगा तो गाय के यहां मिलेगा, दूध मिलेगा भैंस के यहां मिलेगा, दूध मिलेगा तो बकरी के यहां मिलेगा, नब दुही दूध। आकाश से वो दूध लेना असंभव है। ऐसे ही ऐसे ऐसे लोगों की गति संभव नहीं है। चली जाओ मेरे यहां से। तो राम जी के पास आ गई और राम जी ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा तो फिर ढिठाई, फिर जो है ढीठ हुई, लक्ष्मण जी के पास आ गए। पुनि लक्ष्मण पई बहुरी पठाई। अरे मेरे पास नहीं भाई, एक बार कह दिया हम बार बार जाओ लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण कहा देखो भाई मैं दास हूं, कह दिया ना राम जी के पास जाओ, जिधर जाओ उधर ही चली जाए। और बोलती है कि मेरे जैसी कोई दूसरी स्त्री नहीं है। तब वो मन में सोचती है कि आखिर बात क्या है, मैं इतनी सुंदर इतनी श्रेष्ठ इतनी पवित्र और इतनी मैं सब कुछ हूं, फिर बात क्या है। लक्ष्मण जी ने फिर उसको एक बात कह दी, अरे सुन तुझे तो वो ही बरेगा जो तीन तोरी लाज परिहर है, जो तिनका तोड़ लेगा और अपने लाज भी नहीं रखेगा। देखो कोई आदमी है ना भरी सभा में बैठा है, तिनका तोड़े तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो तिनका तोड़ता है लाज छोड़ करके तिनका तोड़ने लगे, वही तेरे साथ वर्ण करेगा, निर्लज्ज व्यक्ति होगा वही तेरे साथ विवाह करेगा। चलो चली जाए यहां से। तब राम जी के पास आकर सीता के रूप आई, भयंकर रूप बनाया। जब भयंकर रूप बनाया तब भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि इसके नाक कान काटो, इशारा किया। कहा अनुज सन शयन बुझाई, नेत्रों से और जो है इशारों से उसको शयन से समझाया कि ऐसे ऐसे इसका नाक कान काट दो। लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काटे। प्रश्न होता है लक्ष्मण जी को क्यों कहा, राम जी ने क्यों नहीं नाक कान काटे? कहते हैं स्त्री को मारना अच्छा नहीं, ताड़का को कैसे मार के आए? ताड़का को तो राम जी ने मारा था, लक्ष्मण जी ने तो नहीं मारा था। तो ये लक्ष्मण को कैसे कहा? इसलिए गोस्वामी जी महाराज जी समाधान कर देते हैं। लक्ष्मण अति लाघव सो नाहक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहां मनौ चुनौती दीन। रावण की छोटी बहन थी, खरदूषण की भी छोटी बहन थी और इसके नाक कान काटे। नाक कान काटने का अर्थ क्या हुआ कि तुम्हारा कान कट गया, अर्थात तुम सच्ची बात कभी दुनिया में सुन नहीं सकती, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं। और नाक काटे माने ऐसे कभी किसके पास जाए कभी किसके पास जाए, उसका कभी नाक भी रहने वाला नहीं है, उसकी इज्जत रहने वाली नहीं है। तो तू जैसे रावण की छोटी है, ऐसे ही मेरा छोटा लक्ष्मण तेरा नाक कान काटा है। ये रावण को चुनौती है, रावण को चुनौती, रावण को मानो चुनौती दी कि हमने तुम्हारी बहन के नाक कान काटे। तो लक्ष्मण को क्यों कहा कि लक्ष्मण जी ने ही उस पहचाना कि ये रावण की बहन है। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, तो कहा कि तू नाक कान काट दे, तो नाक कान काट दिया। अब नाक कान कटने से उसके खूब खून आने लगे, तब जो है ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई गेरू का पहाड़ हो और उस पर खूब बरसा बरसी और भी लाल लाल पानी निकाया जा रहा हो, कान नाक कट गए उसके। अब वो अपने असली रूप में आ गई थी और वहां से वो चिल्लाती 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 खरदूषण तिश्रा के पास चली गई। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय। जय सीताराम 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 जय सीताराम
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 जय सीताराम 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 जय
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम
जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम
यावर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाले
की जय।
आनंद कंद भगवान की
जय।
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं
की जय।
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की
जय।
भक्तवत्सल भगवान की
जय।
जय।